एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो पश्चिमी साहित्य की बिल्कुल जड़ यानी कवि होमर को एकदम नए ढंग से देखती है। ये किताब है बारबरा ग्राजियोसी की होमर। और ग्राजियोसी वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की प्रोफेसर हैं। प्राचीन ग्रीक साहित्य और खासकर महाकाव्यों और उनकी व्याख्याओं पर उनकी गहरी पकड़ है।
जी हाँ,
इस किताब में उनका विचार थोड़ा कह सकते हैं क्रांतिकारी है।
बिल्कुल।
वो ये कह रही हैं कि होमर कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई हाड़ मांस का इंसान जिसे हम इतिहास में खोज सकें,
सही।
बल्कि होमर एक सांस्कृतिक विचार है, एक शक्तिशाली बदलता हुआ विचार जिसे करीब 3000 साल से लोगों ने अपनी अपनी तरह से गढ़ा है ना?
हाँ बिल्कुल, एक सांस्कृतिक घटना की तरह। तो ग्राजियोसिस का सवाल ये नहीं है कि होमर था कौन, बल्कि सवाल ये है कि अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों के लिए होमर का मतलब क्या रहा है। और हमारी आज की चर्चा इसी किताब के अकेडमिक सारांशों पर आधारित है।
हाँ, और ये नज़रिया मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर बहुत पुराने ग्रंथों को आज के चश्मे से देखने लगते हैं ना?
बिल्कुल, यही ग्राजियोसी का मुख्य बिंदु है। वो कहती हैं कि हम आज की जो लेखक की धारणा है कि एक अकेला जीनियस होता है, उसे हम प्राचीन मौखिक परंपराओं पर थोप देते हैं,
अच्छा,
और इससे हम ये समझने से चूक जाते हैं कि ये महाकाव्य तो शायद एक सामूहिक प्रयास थे, कई आवाज़ों से बने थे और धीरे धीरे विकसित हुए थे।
तो मतलब वो जो सदियों पुरानी बहस है होमरिक प्रश्न कि होमर एक था या कई थे,
हाँ,
या इलियड और ओडिसी एक ने लिखी या अलग अलग लोगों ने, ग्राजियोसी उसे सुलझाने की कोशिश नहीं कर रही हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो ये दिखाती हैं कि ये सवाल पूछना ही अपने आप में ज्यादा बताता है।
अच्छा,
क्या बताता है? ये उस संस्कृति के बारे में बताता है जो ये सवाल पूछ रही है, वो लेखक को, कृति को कैसे देखती है। तो फोकस किसी असली कवि को खोजने पर नहीं है, फोकस है होमर नाम के इस विचार के जीवन पर, कैसे हर युग ने अपनी जरूरत के हिसाब से होमर की एक नई तस्वीर घड़ी। ये रिसेप्शन स्टडीज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
रिसेप्शन स्टडीज यानी कृति का अर्थ सिर्फ लेखक नहीं बल्कि पढ़ने वाला समाज और समय भी तय करता है।
जी हाँ, बिल्कुल यही।
ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन फिर भी जो कहानियां हम सुनते आए हैं होमर के बारे में कि वो अंधे थे, कहीं खास जगह पैदा हुए थे, ग्राजियोसी उन पारंपरिक जीवनियों का क्या करती हैं?
हाँ, अच्छा सवाल है। वो उन प्राचीन ग्रंथों की जांच करती हैं जिन्हें होमर के जीवन, लाइव्स ऑफ होमर कहा जाता है।
अच्छा,
और वो साफ करती हैं कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ये तो कल्पना से गढ़े गए पुनर्निर्माण है। इनमें बहुत विरोधाभास है, किंवदंतियां भरी हुई हैं,
जैसे
होमर का अंधा होना। अब ये शायद इसलिए जुड़ा क्योंकि प्राचीन ग्रीस में अंधापन अक्सर दैवीय प्रेरणा या भविष्य देखने की क्षमता से जोड़ा जाता था, या उनका किसी खास शहर स्मिर्ना या चियोस का होना, या उनके नाम का एक मतलब बंधक निकालना, ये सब किसी असली तथ्य से ज्यादा उस समय के आदर्श कवि की एक छवि बनाते हैं।
कैसी छवि?
एक ऐसा इंसान जो थोड़ा समाज से अलग है, शायद पीड़ित है, ईश्वर से प्रेरित है, मतलब एक बाहरी व्यक्ति। तो ये जीवनियां हमें होमर के बारे में कम और प्राचीन यूनानियों की कवि की कल्पना के बारे में ज्यादा बताती हैं।
तो ये जीवनियां भी एक तरह का रिसेप्शन ही हुई उस समय की समझ।
बिल्कुल, और यहीं पर वो आधुनिक होमरिक प्रश्न वाली बहस भी आती है।
हाँ, वो एनालिस्ट बनाम यूनिटेरियन वाले।
जी हाँ, एक तरफ विश्लेषक थे जो मानते थे कि ये महाकाव्य कई अलग अलग कविताओं को जोड़कर बने हैं, दूसरी तरफ एकात्मवादी थे जो मानते थे कि हर महाकाव्य के पीछे एक ही महान रचनाकार है।
और फिर वो मौखिक वाली थ्योरी आई। हाँ,
फिर 20वीं सदी में मिलमिन पेरी और अल्बर्ट लॉर्ड का काम आया। उन्होंने युगोस्लाविया के मौखिक कवियों पर शोध करके दिखाया कि कैसे बिना लिखे भी खास फॉर्मूलों और संरचनाओं का इस्तेमाल करके इतने लंबे महाकाव्य रचे और याद रखे जा सकते थे।
मौखिक सूत्र संरचना,
बिल्कुल, ओरल फॉर्मुलिक कॉम्पोजिशन। तो आज ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि इलियड और ओडिसी एक लंबी मौखिक परंपरा की परिणति है, जिन्हें शायद 8वीं या 7वीं सदी ईसा पूर्व में किसी बहुत प्रतिभाशाली कवि या कवियों ने लिपिबद्ध किया होगा।
तो निष्कर्ष ये कि असली होमर की खोज शायद बेकार है।
हाँ, शायद एक मृगमरीचिका है। असली कहानी इस बात में है कि होमर का ये विचार बना कैसे, टिका कैसे रहा और बदलता कैसे रहा।
ये स्पष्ट हुआ। चलिए अब खुद महाकाव्यों पर आते हैं। इलियड, इसे अक्सर हम युद्ध और वीरता का महाकाव्य मानते हैं। ग्राजियोसी इसमें क्या अलग दिखती हैं?
हाँ, देखिए, वीरता तो है, लेकिन ग्राजियोसी कहती हैं कि ये युद्ध का महिमा मंडन नहीं है, बिल्कुल नहीं।
अच्छा।
ये युद्ध की भयानक कीमत और उसके विरोधाभासों का एक बहुत ही गहरा और कहूं तो द्वंद्वात्मक चित्रण है। कहानी का केंद्र क्या है? अकिलीस का क्रोध,
मेनिस।
हाँ, ये कोई साधारण गुस्सा नहीं, एक तरह का दैवीय विनाशकारी रोष है। और ये रोष सिर्फ दुश्मन ट्रोजन्स का ही नाश नहीं करता, ये खुद अकिलीस के लिए और उसके अपने साथियों ग्रीक लोगों के लिए भी तबाही लाता है।
तो ये मानवीय कीमत पर जोर है।
बिल्कुल, ये नश्वरता पर, यानी इंसान के मरने की सच्चाई पर, कीर्ति क्लियोस पर, वो प्रसिद्धि जो मौत के बाद भी जिंदा रहती है, और मानवीय पीड़ा पर एक गंभीर चिंतन है।
कौन से हिस्से खास तौर पर ये दिखाते हैं?
ग्राजियोसी कुछ दृश्यों को उभारती हैं, जैसे हेक्टर और एंड्रोमैकी की विदाई। ये दिखाता है कि युद्ध का असर सिर्फ मैदान पर नहीं, परिवारों पर, रिश्तों पर कितना गहरा होता है।
हाँ, वो बहुत मार्मिक दृश्य है,
है ना? फिर अकिलीज और हेक्टर का वो द्वंद्व युद्ध, जिसमें वीरता भी है और बर्बरता भी,
और शायद सबसे यादगार
वो प्रियम वाला दृश्य। हाँ, किताब 24 में जब बूढ़ा राजा प्रियम अपने बेटे हेक्टर का शव लेने अकिलीस के खेमे में जाता है, वहां दुश्मन होने के बावजूद दोनों के साझा दुख में एक सहानुभूति का पल आता है। और ग्राजियोसी एक और बहुत जरूरी बात कहती है इलियट की, निष्पक्षता। वो ट्रोजन्स की पीड़ा और वीरता को भी उतनी ही संवेदनशीलता से दिखाती है जितनी ग्रीक की। ये किसी एक पक्ष की कहानी नहीं लगती,
ये जैसे पूरी इंसानियत की त्रास दियो।
बिल्कुल,
ये वाकई इलियट को एक अलग तरह से देखने पर मजबूर करता है। अच्छा, अब ओडिसी की बात करें
जी,
ये तो इलियट से काफी अलग लगती है ना?
जी,
इलियट एक जगह केंद्रित है, ट्रॉय के मैदान में। ओडिसी एक लंबी यात्रा है।
हाँ, बिल्कुल अलग है। ओडिसी यात्रा की, रोमांच की, और सबसे बढ़कर घर वापसी नॉस्तोस की कहानी है।
नॉस्तोस
जी, और इसका नायक ओडिशियस, वो इलियट के नायकों जैसा सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत बीए से नहीं जाना जाता, उसकी असली ताकत है उसकी बुद्धि, उसकी चालाकी, मेतिस। उसे कई मोड़ों वाला आदमी भी कहा गया है। हाँ, पॉलीट्रोपोस, वो मुश्किलों से बच निकलने वाला है, एक बेहतरीन कहानीकार है, जरूरत पड़ने पर भेस बदल लेता है।
इसकी संरचना भी अलग है शायद।
हाँ, ग्राजियोसी बताती हैं कि ये मोटे तौर पर तीन हिस्सों में है। पहला टेलेमैकी, ओडिशियस का बेटा टेलेमैकस अपने पिता को खोज रहा है। दूसरा ओडिशियस का 10 साल का भटकाव, जिसमें वो साइक्लॉप्स, सिरसी, अंडरवर्ल्ड सब जगह जाता है,
रोमांच वाला हिस्सा।
हाँ, और तीसरा हिस्सा है उसकी इथाका में गुप्त वापसी, जहाँ उसे अपनी पहचान फिर से बनानी है और उन दावेदारों से निपटना है जो उसकी पत्नी पेनेलोपी से शादी करना चाहते हैं।
तो यहाँ मुख्य विषय क्या उभरते हैं?
एक तो पहचान का सवाल, 20 साल बाद ओडिसियस को साबित करना है कि वो वही है। दूसरा सभ्यता बनाम बर्बरता, जैसे साइक्लोप्स की कहानी में।
अच्छा।
और तीसरा खूब कहानी कहने की कला, ओडिसियस लगातार अपनी कहानियां सुनाता है और शायद उन्हें थोड़ा बदलता भी है।
और महिला पात्रों की भूमिका भी इसमें ज्यादा लगती है इलियट की तुलना में।
हाँ, बहुत अहम है। एक तरफ वफादार और बुद्धिमान पेनेलोपे, दूसरी तरफ देवी एथीना जो उसकी मदद करती है, और फिर कैलिप्सो और सिरसी जैसी शक्तिशाली, मोहक और खतरनाक स्त्रियां भी हैं। तो ग्राजियोसी के मुताबिक ओडिसी युद्ध के बाद जीवन को, परिवार को, समाज को फिर से जोड़ने का एक बहुत गहरा अन्वेषण है।
तो ये दोनों महाकाव्य मानवीय अनुभव के अलग अलग लेकिन बहुत गहरे पहलुओं को छूते हैं, लेकिन इनमें जो दुनिया दिखाई गई है, क्या वो उस समय के ग्रीस का, मतलब ऐतिहासिक रूप से सही चित्रण है?
देखिए, यहीं पर ग्राजियोसी एक बहुत जरूरी बात कहती हैं। वो बताती हैं कि ये कविताएं एक मिश्रित दुनिया पेश करती हैं।
मिश्रित दुनिया मतलब?
मतलब ये किसी एक खास समय का फोटो नहीं है, ये एक काव्यात्मक रचना है जो अलग अलग ऐतिहासिक दौरों की चीजों को मिला देती है। इसमें कांस्य युग की माइसिनियन सभ्यता की यादें हैं, जैसे कांस्य के हथियार, वो सुअर के दांत वाला हेलमेट।
हाँ, जिसका जिक्र आता है।
लेकिन साथ ही इसमें बाद के अंधकार युग और 8वीं सदी ईसा पूर्व, जब ये कविताएं शायद लिखी गईं, उसके तत्व भी हैं, जैसे दाह संस्कार या उस समय की सामाजिक संरचनाएं।
तो फिर इन्हें इतिहास की तरह नहीं पढ़ना चाहिए?
नहीं, ग्राजियोसी कहती हैं कि इन्हें सीधे ऐतिहासिक स्रोत मानना एक गलती होगी।
कवि जानबूझकर एक दूर का वीर अतीत रच रहे थे जो उनके अपने समय से ज्यादा महान लगे।
ये इतिहास नहीं बल्कि इतिहास की एक तरह की काव्यात्मक स्मृति है।
बिल्कुल सही।
पर हाँ, इस रची हुई दुनिया के अपने सामाजिक मूल्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं।
जैसे?
जैसे सम्मान, टीमें का बहुत महत्व है, उपहारों का लेन देन, मेहमान नवाजी, जैनिया तो एक पवित्र कर्तव्य है, नेताओं और समुदाय के बीच रिश्ते कैसे हों, तो ये कविताएं हमें किसी एक अतीत की सच्ची तस्वीर नहीं बल्कि बाद के यूनानियों ने अपने अतीत को कैसे देखा उसका प्रतिबिंब देती हैं। उन्होंने एक वीर युग की मिथक गढ़ी जिसने उनकी पहचान बनाई।
और पुरातत्व, वो कहाँ फिट होता है?
पुरातत्व कुछ चीजों की पुष्टि कर सकता है जैसे वो हेलमेट, लेकिन वो कविताओं को सच साबित नहीं कर सकता। कविताओं का सत्य ऐतिहासिक नहीं काव्यात्मक है।
काव्यात्मक सत्य बनाम ऐतिहासिक तथ्य, ये बहुत अहम है। अब आते हैं ग्राजियोसी के तर्क के केंद्र पर, होमर का उत्तरजीवन या रिसेप्शन, यानी बाद के समयों ने होमर को कैसे देखा, कैसे इस्तेमाल किया, प्राचीन यूनान और रोम में क्या हुआ?
प्राचीन यूनान में तो होमर बहुत जल्दी ही शिक्षा और संस्कृति की नींव बन गए। धर्म, नैतिकता, इतिहास, युद्ध नीति, सब कुछ उनमें ढूंढा जाने लगा।
मतलब वो टेक्स्ट बुक बन गए एक तरह से?
हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इसी वजह से उन पर सवाल भी उठे। सबसे बड़े आलोचक थे प्लेटो।
हाँ, उन्होंने तो कवियों को अपने आदर्श राज्य से निकालने की बात कही थी।
बिल्कुल, क्योंकि उन्हें लगता था होमर देवताओं को इंसानी कमजोरियों के साथ दिखाते हैं, जो ठीक नहीं। ये दिखाता है कि होमर कितने प्रभावशाली थे।
और फिर बाद में रोमन काल में,
हेलिनिस्टिक काल में अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय के विद्वानों ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने होमर के पाठ को स्थिर किया, मानकीकृत किया, उन्हें 24-24 किताबों में बांटा।
अच्छा, वो विभाजन तब हुआ?
जी। फिर रोमनों ने होमर को अपनाया। वर्जिल ने एनिड लिखी जो होमर के मॉडल पर थी, पर रोम की कहानी कहती थी। ये होमर को सम्मान देने के साथ साथ उनसे आगे निकलने की भी कोशिश थी,
अपना राष्ट्रीय महाकाव्य बनाने की कोशिश।
सही। और अनुवाद करना भी एक तरह से सांस्कृतिक विजय मानी गई।
हाँ, ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा, मध्ययुग में, पुनर्जागरण में?
हाँ, ग्राजियोसी इसे आगे ट्रेस करती हैं। पश्चिमी यूरोप में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ग्रीक का ज्ञान कम हुआ, तो होमर थोड़े पीछे चले गए।
लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन में, वो सुरक्षित रहे?
अच्छा, फिर आया पुनर्जागरण इटली में। बाइजेंटाइन विद्वान अपने साथ होमर की पांडुलिपियां लाए। ये पश्चिमी यूरोप के लिए एक पुनर्खोज जैसा था। और यहीं से फिर यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद का सिलसिला शुरू हुआ। इंग्लैंड में चैपमैन, पोप, और ये आज तक चल रहा है रॉबर्ट फैगल्स, एमिली विल्सन।
हाँ, एमिली विल्सन का ओडिसी का अनुवाद काफी चर्चित रहा।
जी। और हर अनुवाद, ग्राजियोसी कहती हैं, अपने आप में एक व्याख्या है। वो दिखाता है कि उस युग ने होमर को कैसे समझा।
तो अनुवाद भी रिसेप्शन का हिस्सा है, और अकादमिक दुनिया में ज्ञानोदय का समय।
ज्ञानोदय में फिर बहस हुई, प्राचीन बनाम आधुनिक, क्या होमर सबसे महान है या नए लेखक बेहतर हैं। जर्मनी में वुल्फ ने फिर होमर एक प्रश्न उठाया कि होमर शायद एक व्यक्ति नहीं बल्कि लोक कवि थे।
वो प्राकृतिक प्रतिभा वाला विचार।
हाँ, जिसने रोमांटिक आंदोलन को प्रभावित किया। रोमांटिक युग में राष्ट्रवाद के साथ होमर को राष्ट्रीय जड़ों के प्रतीक की तरह भी देखा गया। फिर 19वीं-20वीं सदी में पुरातत्व आया, श्लीमैन ने ट्रॉय खोजा, भाषा विज्ञान, मानव शास्त्र, सबने होमर के अध्ययन को नए आयाम दिए।
और आज? आज होमर कहाँ है?
आज हम वैश्विक होमर देखते हैं। साहित्य में जेम्स जॉयस का यूलिसिस, डेरेक वॉलकॉट का ओमेरोस, फिल्में हैं ट्रॉय, ओ ब्रदर, वेराटो।
हाँ, वो कोएन बंधुओं की फिल्म।
जी। ग्राजियोसी का कहना है कि हर नया रूपांतरण, हर नया अनुवाद, हर पठन, ये सब दिखाता है कि इन महाकाव्यों में खुद को नया करने की कितनी जबरदस्त क्षमता है। वो एक सांस्कृतिक कसौटी बन गए हैं।
सांस्कृतिक कसौटी हर युग उन्हें छूकर अपनी पहचान बनाता है, उनसे अपने मतलब निकालता है।
बिल्कुल।
ये पूरी यात्रा तो कमाल की है, एक नाम, दो कविताएं और 3000 साल की लगातार बदलती हुई बातचीत। तो अगर हमें ग्राजियोसी की इस पूरी किताब का सार निकालना हो, वो मुख्य संदेश क्या होंगे?
हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ मुख्य बातें ये हैं। पहला, होमर एक व्यक्ति से ज्यादा एक प्रतीक है, एक सांस्कृतिक निर्मिति। व्यक्तिगत लेखकत्व का विचार यहाँ लागू नहीं होता। दूसरा, इलियाड और ओडिसी के विषय गुस्सा, दुख, मौत, पहचान, घर, जिंदा रहना, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, सार्वभौमिक हैं।
सही।
तीसरा, इनकी मौखिक जड़ों के कारण ये ग्रंथ लचीले हैं, व्याख्या के लिए खुले हैं, अलग अलग संस्कृतियों ने इन्हें रचनात्मक रूप से अपनाया है।
मतलब वो सांस्कृतिक विनियोग, कल्चरल अप्रोप्रिएशन, यहाँ एक रचनात्मक शक्ति रही है।
हाँ, ग्राजियो से यही तर्क देती हैं। चौथा, अतीत और वर्तमान के बीच लगातार संवाद चलता है, हर पठन अपने समय को दर्शाता है और इसी से परंपरा जिंदा रहती है।
और
पांचवा, वीरता जटिल है, अकीलीज, ओडिसियस, वे महान हैं पर त्रुटिपूर्ण भी हैं, मानवीय हैं,
आदर्श नायक नहीं है।
बिल्कुल। छठा, काव्यात्मक सत्य और ऐतिहासिक तथ्य अलग हैं, इनका मूल्य तथ्यात्मक सटीकता में नहीं, मानवीय अनुभव के गहरे अन्वेषण में है। सातवां, होमर की व्याख्याएं हमेशा राजनीतिक रही हैं, उनका इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए होता रहा है।
अच्छा।
और आठवां, सांस्कृतिक स्मृति स्थिर नहीं होती, वो लगातार पुनर्व्याख्या से जिंदा रहती है और बदलती है, होमर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
ग्राजियोसिने का ये विश्लेषण वाकई न सिर्फ होमर बल्कि किसी भी क्लासिक को देखने का नजरिया बदल देता है। ऐसा लगता है असली शक्ति इन कृतियों से शुरू हुई उस कभी न खत्म होने वाली बातचीत में ही है।
बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि महान कला सिर्फ अतीत की चीज नहीं है, वो हमारी संलग्नता से जीवित रहती है, लगातार नए अर्थ पाती है।
ये कहानी कहने की और उन कहानियों को बार बार सुनने और सुनाने की हमारी जरूरत का सबूत है।
हाँ बिल्कुल, कहानी की अमर शक्ति का प्रमाण।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकर्थ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।